الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وشلية أواداري قابل احترام خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو اور ایمانی زندگی کو اس دنیا میں ہمیں بنانے کے لیے بھیجا ہے اور تھوڑے دن کے لیے یہاں رکھا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے، ہماری پوری زندگی نہیں ہوتی، ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پوری زندگی ہماری بہت لمبی ہے، عالم ارواح سے، ماں کے پیٹ سے، اس دنیا کے اندر، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی میں، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں، پھر حشر سے فراغت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا جنت میں یا جہنم میں، یہ پوری ملا کر ہماری زندگی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی بہت لمبی چوڑی ہے، ہر مرد کی، ہر عورت کی جو اس دنیا میں آ گئے، ہر بچے کی، ہر بچی کی۔ تو ہمارے پہلے جو دو مرحلے تھے، ایک ہماری روح کے بننے کا عالم ارواح میں ہم تھے، ایک ہمارے جسم کے بننے کا ماں کے پیٹ میں، اور اس دنیا کے اندر جسم اور روح دونوں کو ملا کر رکھا گیا تاکہ آخرت کی تیاری کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اب آخرت کی تیاری اس دنیا میں کیسے ہوگی، اور اس دنیا میں جتنے دن انسان کو رہنا ہے اس میں زندگی گزارنے کے واسطے جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری کرے گا، ان دونوں چیزوں کو کیوں کر ملایا جائے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے شریعت نازل فرمائی، دین نازل فرمایا، دنیا کے بھی اصول بتائے، آخرت کے بھی اصول بتائے، گھر گھرستی بھی بتائی، شادی بیاہ کی زندگی بھی بتائی، کاروبار بھی بتایا، کھانا پینا بھی بتایا، پہننا اوڑھنا بھی بتایا، رہنا سہنا بھی بتایا، اور زندگی کا مقصد بھی مقرر فرمایا، اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس طرح اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جسم اور روح کو ملا کر تھوڑے دن رکھنا طے فرمایا تاکہ پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیاری کر سکیں، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکیں، ہمیشہ اللہ پاک کی نعمتوں میں داخل ہو سکیں، اور اللہ پاک کی سزا اور اللہ پاک کی مصیبتوں سے، بنائی ہوئی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو آگے جیسے ہماری اب تک کی زندگی کے تین اسٹیجز گزرے ہوئے ہیں، آگے بھی تین ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، شفق کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، تم ضرور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ جیسے یہ تیسرے مرحلے میں ہم لوگ ہیں، پہلے خالی روح کا مرحلہ، پھر جسم بنی، جسم کے اندر روح آئی، پھر روح اور جسم کو ملا کر صفات عطا فرما کر، اختیار عطا فرما کر، اسباب عطا فرما کر ہاتھ پیر کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ دنیا اب تیاری کی جگہ ہے اور بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت لمبے وقت کے لیے ہیں، لیکن جو وقت آگے آنے والے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ جب تمہارے ہزار سال ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس ایک دن ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو اگر سو سال اس دنیا کا وقت اللہ پاک دیے تو اللہ پاک کے دن کے حساب سے एक दिन का उसको दसवां हिस्सा ही दिया गया, 1/10 दसवां हिस्सा उसको एक दिन का, अगर 100 साल वो यहाँ रहता है तो। तो अल्लाह के पास वक्त बहुत लंबा है, वक्त बहुत ज़्यादा है, हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी बनाई गई है, इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस, उनसे भी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को टाइम अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। उसमें दुनियावी ज़िंदगी को तैयारी करने के लिए बनाया गया है बहुत थोड़ा, एक दिन का दसवां हिस्सा अल्लाह पाक के हिसाब से, क्योंकि इम्तिहान के लिए तैयारी के वास्ते आमतौर पर इतना ही वक्त दुनिया में भी इंसानों के पास हुआ करता है। एग्जामिनेशन हॉल में हमने देखा कि वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है या 3 घंटे का होता है स्कूलों वगैरह के अंदर। अब जब से ये कंप्यूटर का सिस्टम निकला, आईटी का सिस्टम निकला और दूसरे तफसीली प्रैक्टिकल जो है ना एग्ज़ाम्स शुरू हुए, तो उसमें टाइम ज़्यादा हो रहा है। वरना हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर जो तरतीब है, कॉलेजेस के अंदर जो तरतीब होती है, एग्जामिनेशन हॉल में 2.5 घंटे की होती है, 2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, ये पूरे 24 घंटे का दसवां हिस्सा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा इंसान को इस दुनिया में दिया, और इसी वजह से क़यामत में जब लोग मुज़ाकरा करेंगे और ये आपस में सवाल करेंगे कि तुम दुनिया में कब तक रहे, कितना रहे, जगह जगह कुरान पाक में कई जगहों पर यह सवाल जवाब क़यामत में इंसानों का जिक्र फरमाया अल्लाह पाक ने। सवाल करने वाले कहेंगे कि तुम कितने दिन रहे वहाँ पर, तो जवाब देने वाले कहेंगे कि यार सुबह के किसी वक्त में हम रहे, एक दिन की सुबह के थोड़ी देर के लिए रहे, या एक ही दिन की शाम के थोड़ी देर के लिए हम रहे, लम यलबतु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, या शाम के वक्त में थोड़ी देर रह के आए दुनिया में, एक दिन के शाम के वक्त में, या दोपहरी के थोड़े से वक्त में रह कर आए, इतनी तरह के, एक दिन से ज़्यादा का तो कोई कहेगा ही नहीं, और एक दिन में भी वो थोड़े से वक्त का जिक्र करेंगे। अल्लाह पाक जो है ये बताएंगे कि ये दुनिया का जो वक्त था जिस वक्त तुम गुजार रहे थे ये टाइम, तो तुम्हें लंबा रखना आता, लेकिन जो वक्त तुम्हारा आने वाला है उसके मुकाबले में तो ये एक दिन का भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। तो हमें इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इम्तिहान के लिए रखा गया है, और इम्तिहान के लिए जब होता है तो फोकस इम्तिहान को किया जाएगा, न कि इम्तिहान के हाल में पाई जाने वाली फैसिलिटीज़ को, उसकी सहूलतों को। सहूलतें तो चारा नहीं है, साया चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए, खाना पीना चाहिए ही चाहिए, हमारी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी को सामने रखना है, मकसद पूरा करना है। मकसद क्या है? मकसद ईमान है, आमाल है। मकसद क्या है? मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात को और इंसानों को पैदा किया इबादत के लिए, यानी बंदगी के लिए पैदा किया। बंदगी में होता यह है कि जब इबादत करने को कहा जाए तो इबादत, और जब ज़रूरतें पूरी करने का वक्त आता है तो उसमें जो पाबंदी ज़रूरत पूरी करने की होती है वैसी ज़रूरत पूरी कर लेना। कमाने के लिए कमाना इबादत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है वो, लेकिन इबादत का सवाब उसमें मिलता है, इबादत में कंसीडर हो जाता है वो जब अल्लाह की मर्ज़ी के मुआफ़िक कमाया जाता है। शादी करना इंसान की ज़रूरत है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुआफ़िक की जाए तो इबादत हो जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ वाली लाइफ गुजारना एक ज़रूरत है इंसान की, लेकिन अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो तो फिर वह इबादत हो जाती है। बच्चे इंसान की एक ज़रूरत हैं, लेकिन जब वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उनकी तरबियत हो तो फिर वह इबादत हो जाती है। तो ये जारी हमारी खाना पीना पहनना रहना सहना सवारी ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीज़ें ऐसी हैं। तो बंदगी में ये होता है कि जो तुम्हारी ज़रूरत में ज़रूरतें हैं उसमें तुम हमारे हुक्म और हमारे नबी के तरीक़े के पाबंद आज़ाद नहीं। और बंदगी का जो अल्लाह तबारक व तआला ने तरीक़ा ख़ास मुकर्रर किया जिसको इबादत कहते हैं, जिसका ताल्लुक इंसान की ज़रूरतों से नहीं है, मकसद से है, जिसका अंजाम दुनिया में सामने नहीं आएगा बाद में आएगा, क्योंकि मकसद का अंजाम बाद में सामने आता है, वो इबादतें, उसमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, एतिकाफ है, क़ुरबानी है, उम्रा है, तवाफ़ है, ये इबादतें, उसका कोई अंजाम इस दुनिया में फौरी तौर पर नज़र नहीं आता, नतीजा नहीं कोई। नमाज पढ़े अभी जिन लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी उनको फौरन उसका रिज़ल्ट दुनिया में क्या है, तो आखिरत में सामने आएगा, क्योंकि वो इबादत है अल्लाह पाक। जिन्होंने ज़कात दी ऐसे ही, जिन्होंने रोज़ा रखा रमज़ान मुबारक का आखिरत में उसका नतीजा सामने आने वाला है। ऐसे जिन्होंने हज किया आखिरत में उसका नतीजा सामने आने वाला होता है। जो इबादतें हैं वो खालिस अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी के लिए होती हैं। और जो ज़रूरतें होती हैं उसमें अल्लाह पाक की बंदगी की, अल्लाह पाक की अब्दियत, अल्लाह पाक की बंदगी करनी पड़ती है, यानी उनके हुक्मों को पूरा करना और उनके उनके नबी के तरीक़ों को, नबी के तरीक़ों पर को फॉलो करना। तो इस दुनिया में मर्द हो या औरत हो, अपने सारी ज़रूरतों के साथ साथ अपने ईमान की फ़िक्र करनी है और ईमानी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी है। ईमान आदमी के दिल में होता है, अंदरून में होता है, और ईमानी ज़िंदगी आदमी के अमाल से छलकती ज़ाहिर होती है। ईमान और ईमान के अमाल, ईमान और ईमान की जिम्मेदारियाँ, ईमान और ईमान के तकाजे भी कहते हैं उसको, ये हमें इस दुनिया में पूरी करनी है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ईमान में अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की तकदीर पर ईमान, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान, जन्नत और जहन्नम पर ईमान, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान, ये ईमानियात कहलाते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाति बादल मौत, ये ईमानियात कहलाते हैं। ये इन सात बातों को जहन में ऐसे बिठाना, उस पर ऐसे यकीन लाना कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए, उसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। अल्लाह पर ईमान में अल्लाह की ज़ात आली का यकीन, अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत का यकीन, अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाले हैं इसका यकीन, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है इसका यकीन, नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त ज़िल्लत, मौत हयात, तंदुरुस्ती बीमारी, कामों का बनना नहीं बनना, कारोबार का चलना न चलना, औलाद का होना न होना, औलादों की शादियों का होना न होना, औलादों की तरबियत का होना, दुनिया के अंदर आदमी का सुकून से रहना, सेहत आफ़ियत के साथ में रहना, हादसात का हो जाना, हादसात से बच जाना, बीमारियों में मुब्तला होना, बीमारियों से बच जाना, ये सब अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक रब हैं, वो अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाने वाले हैं, और जब हिफाजत फरमाना चाहें, फरमाने का इरादा करें, तो कोई चीज़ उनको हिफाजत से रोक नहीं सकती। बड़ी से बड़ी चीज़ की हिफाजत छोटी से छोटी चीज़ से वो कर लेते हैं। जब वह हिफाजत करने पर आए तो उन्होंने अंबिया के इमाम की हिफाजत मकड़ी के जाले से फरमा ली। अल्लाह पाक जब पकड़ते हैं तो पकड़ने के लिए कोई उनके पास ये नहीं है कि उनके पास उनको फौज चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा सब कुछ चाहिए, चाहे फौज से ही पकड़ लें और चाहे किसी मामूली से मामूली चीज़ से पकड़ लें, चाहे मच्छर से पकड़ लें, मक्खी से पकड़ लें, परिंदों से पकड़ लें, हाथियों की फ़ौज को छोटे छोटे परिंदों से अल्लाह तबारक व तआला तबाह और बर्बाद कर दें, पानी में डुबो दें, ज़मीन में डुबो दें, हवा से पटक पटक के मार दें, आग में जला दें, आग लगा दें, जलजला आ जाए ज़मीन में धंसा दें, कुछ भी कहीं भी जो चाहे जब चाहे जिसके साथ चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जब चाहे और जो चाहे और जिसके साथ चाहे जैसा चाहे, इज्तमाही इंफरादी, वो चाहे तो पूरी दुनिया को एक सेकंड में ख़त्म कर दें, वो चाहे तो ऐसी बहुत सी दुनियाएं एक सेकंड में बना दें। तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आली का यकीन। फिर अल्लाह ने अपना एक फरिश्ते बनाए हैं, अल्लाह की एक ख़ास मखलूक है फरिश्ते, उन फरिश्तों के ज़रिए से पूरा कारखाना निज़ाम, निज़ाम आलम, पूरा कारखाना आलम का जो निज़ाम है वो अल्लाह पाक उनके ज़रिए से चलाता है। अल्लाह पाक उनकी पाबंद नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी एक तरतीब बनाई है, उनकी एक सुन्नत है, उनकी एक हिकमत है, उसके अतबार से उन्होंने आसमानों में फरिश्ते रखे हुए हैं, ज़मीन में फरिश्ते रखे हुए हैं, पानियों पर फरिश्ते रखे हुए हैं, पहाड़ों पर फरिश्ते रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हर हर चीज़ के साथ फरिश्तों का निज़ाम फरमाया है। इंसानों के साथ में फरिश्ते हैं, उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, उसकी जान निकालने के लिए फरिश्ते हैं, उसके आमाल लिखने के लिए फरिश्ते हैं, उसके सवाल जवाब करने के लिए फरिश्ते हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए सुबह शाम फरिश्ते हैं, जन्नत के ज़िम्मेदारों में फरिश्ते हैं, जहन्नम के ज़िम्मेदारों में फरिश्ते हैं, जन्नत का मैनेजमेंट वो फरिश्तों के ज़रिए से, जहन्नम का मैनेजमेंट वो फरिश्तों के ज़रिए से, पूरी दुनिया का, पूरे कारखाने का, दुनिया और आखिरत का निज़ाम अल्लाह पाक ने फरिश्तों से चलाया हुआ है। उन फरिश्तों में अल्लाह तबारक व ताला ने वही लाने वाले फरिश्ते बनाए हैं, जान निकालने वाले फरिश्ते बनाए हैं, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते बनाए हैं, सूर फूकने वाला फरिश्ता बनाया है जो पूरे आलम को ख़त्म कर देगा। तो उन फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ने वही भेजकर अपने पैगंबरों तक पैगंबरों को अपना पैगंबर बनाया। तो फरिश्तों पर ईमान लाना कि फरिश्तों की का एक निज़ाम है, गैबी निज़ाम, पूरी दुनिया का गैबी निज़ाम और आखिरत का पूरा निज़ाम जो नज़र नहीं आता वो फरिश्तों के ज़रिए से अंजाम पाता है। अल्लाह की किताबों पर यकीन कि अल्लाह पाक ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के वास्ते किताबें नाजिल फरमाईं। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है, इंसान ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ख़ुद से मुकर्रर नहीं कर सकता। इंसान अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की ममलूक है, अल्लाह के पैदा करदा हैं, अल्लाह इनका मालिक है, अल्लाह ही इनका रब है। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं सारे इंसान, पूरी मखलूक भी अल्लाह की पैदा की हुई है, इंसान भी। तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का पाबंद है, अल्लाह का हक है इंसान के ऊपर। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, मर्द हो या औरत हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना हक बताया कि मेरा हक क्या है तुम्हारे ऊपर, मेरे राइट्स क्या है तुम्हारे ऊपर। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल फरमाई, किताबों के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया और उसमें ये फरमाया कि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, इम्तिहान तुम्हारा दुनिया में इसी बात का है। तुम किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम आखिरत में, आखिरत के हर हर मरहले में कामयाब हो जाओगे। खबर की ज़िंदगी वो हज़ारों साल की है, हशर की ज़िंदगी वो 50,000 साल की है, उसके बाद की ज़िंदगी वो तो अनलिमिट है, हमेशा हमेशा की है, अबदन अबदा, खालिदीन फिया अबदा उसकी शान है, वो हमेशा उसमें कामयाबी हो जाएगी अगर किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे। किताब के मुताबिक तरबियत देना, किताब किस पर उतारी जाएगी, पैगंबर पर उतारी जाएगी। किताब की तरबियत का कैसा, किताब के मुताबिक तरबियत कौन करेंगे, पैगंबर करेंगे। किताब में क्या बात है वो कैसे पता चलेगा, वो बस पैगंबर समझाएंगे कि इस किताब में क्या बात बताई गई है। चाहे किसी को तर्जुमा आता हो फिर भी वो नबी के बताने का पाबंद होगा। जैसे अरबों को कुरान पाक अरबी चूँकि वो समझते थे तो कुरान पाक का तर्जुमा आता था, लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप बताएंगे क्या उतारा गया है। वह अनजलना इलैक ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल किया ताकि बयान करें आप लोगों से कि क्या नाजिल किया गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किताब में अल्लाह पाक ने क्या बताया है ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक़ा और उस पर कैसे अमल किया जाता है। उसकी तरबियत भी आपने दी, अमली ट्रेनिंग भी आपने उसकी दी, ज़ाहिर और बातिन को आरास्ता करने का तरीक़ा बताया। इंसान अल्लाह का बंदा अपने अंदरून और अपने बैरून से कैसा बनेगा, अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी उसमें कैसे आएगी, वो अल्लाह का महबूब कैसे बनेगा और उससे उसका अल्लाह कैसे राज़ी होगा, इसकी तफसीरात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। फिर ये जो ज़िंदगी इंसान की होती है, जैसे वो करेगा वैसे वो भुगतेगा। अगर किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो उसका अंजाम उसके हिसाब से सामने आएगा, और अगर किताब के मुखालफत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो उसका अंजाम उसके सामने आएगा। ये इम्तिहान की जगह होने की वजह से मजबूर नहीं किया जाएगा। जिसका एग्ज़ाम लेना होता है, जिसका इम्तिहान लेना होता है, उसको चांस दिया जाता है, मुआफ़त का भी, मुखालफत का भी, करने का भी, ना करने का भी। तो इसलिए उसके एतबार से फिर रिज़ल्ट सामने आएगा, कामयाबी और नाकामी का। इसलिए वलियों में आखिर आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी रखा गया। हमारी एक आखिरत है, मरने के बाद सारे के सारे दोबारा वहाँ ज़िंदा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी का, उसके हिसाब के एतबार से उसका अंजाम तय किया जाएगा। अल्लाह पाक को तो पहले से मालूम है, लेकिन इंसाफ सामने लाने के वास्ते हर हर चीज़ का हिसाब करके उसका रिज़ल्ट बताया जाएगा कि हिसाब करने की वजह से तुम्हारे हिसाब में ये चीज़ आई है, जन्नत आई है तुम्हारे हिस्से में, ये जहन्नम आई तुम्हारे हिस्से में, जन्नत आई तो जन्नत का कौन सा दर्जा तुम्हारे हिस्से में आया, जहन्नम आई तो जहन्नम का कौन सा तबका तुम्हारे हिस्से में आया, कितने दिन की सज़ा, कितने सालों की सज़ा, कितने किस नौयत की सज़ा, ये सज़ाओं के एतबार से तफसील और जजा और इनाम के एतबार से तफसील ये बताई जाएगी। वलियौमिल आखिर, फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी के जो हालात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तय हैं। वलक़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, अल्लाह पाक ने इंसान को इम्तिहान में रखने के वास्ते उसके हालात तय फरमा दिए। हालात अल्लाह ही बनाते हैं, किसी को खुश रखा کسی کو خوش نہیں رکھا. جس کو خوش رکھا اس کو صدمہ بھی ملتا ہے, جس کو خوش نہیں رکھا اس کو خوشی بھی ملتی ہے. صرف ایک چیز اس دنیا میں نہیں ملتی, یہ قاعدہ نہیں ہے. خراب سے خراب حالت والے انسان کو خوشیاں بے حساب ملی ہیں, نعمتیں اللہ پاک بے حساب دیتا ہے, اور اچھے سے اچھی حالت والے انسان کو بہت سے آزمائشوں اور ابتلاءات میں اللہ پاک مبتلا فرماتا ہے. یہ تقدیری حالات ہوتے ہیں, اس کے لیے نیک اور بد ہونے کا تعلق بھی نہیں ہے. نیک سے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں, بیماریاں ان کے ساتھ ہیں, حالات پریشانیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. برے سے برے بندوں پر حالات آتے ہیں, پریشانیاں ان کو آتی ہیں, اور نیک سے نیک بندوں کو اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتے ہیں, برے سے برے بندے کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں. نعمتوں کی آزمائش جو ہے وہ شکر کے امتحان کے لیے ہے جو ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور مصیبتوں کی آزمائش جو ہے وہ صبر کے امتحان کے لیے ہے جو ہر بندے اور بندے کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. اللہ پاک کا اصول یہ ہے کہ کسی کو کچھ دے گا, کسی کو کچھ نہیں دے گا, اور دوسرے کو بالکل اس کے برخلاف جو ہے نا, جو چیز اس کو دیا ہے اس کو نہیں دے گا, اس کو دوسری چیز دے گا, جو اس کو نہیں دیا وہ اس کو دے دے گا. تو کسی کو ہر ایک کو ایک سیٹ اپ کی چیز دینا طے نہیں ہے, ایک ہی چیز دینا طے نہیں ہے, اور ہر ایک کو ایک ہی چیز نہیں دینا طے نہیں ہے, بلکہ کچھ چیزیں کسی کو دی جائیں گی اور وہی کچھ چیزیں نہیں دی جائیں گی, دوسرے بندے کو کچھ چیزیں دی جائیں گی وہیں کچھ چیزیں نہیں دی جائیں گی, یہ الگ الگ چیز ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دوسرے بندے کو جو چیز نہیں دی گئی تو اس کے مقابلے میں جو اس کو دی گئی اس کا وہ شکر ادا کرے, اور جس کو جو چیز نہیں دی گئی اس کے مقابلے میں جس کو دی گئی ہے اس کے مقابلے میں وہ صبر کو اختیار کرے اور شاکرانہ زندگی گزارے. سب کچھ نہیں ملے گا اس دنیا میں, کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا, ہمیشہ خوشیاں نہیں ہوں گی, کچھ خوشیاں ہوں گی کچھ غم ہوں گے. چاہے مالدار ہو چاہے امیر ہو, اسٹیٹس چاہے کیسے ہی ہو, کچھ بھی ہو اس دنیا کے اندر, ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سیٹل ہو گئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے, اچھے اچھے مکانات ان کے پاس ہے, ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ان کے پاس ہے, شاید وہ بہت مزے میں ہیں. جب ان کے حالات کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان تکلیف والے لوگوں سے زیادہ پریشان ہیں. ایک صاحب کو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے, انہوں نے کسی بزرگ نے بتایا کہ فلاں جگہ پر جو تم کو ملیں گے وہ خضر ہوں گے, تم ان سے دعا کی درخواست کر لینا. اتفاق سے وہ مل گئے تو وہ ان کو سمجھ میں آگے آ کے وہ حضرت خضر جو ہے نا ان کو ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں. فرمایا کہ اچھی بات ہے, میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا, آپ یہ طے کر لیجئے کہ مجھ سے کیا دعا کرانی. انہوں نے یہ اختیار دیا کہ مجھے آپ ایسا کر لو کہ کسی انسان کو چن لو, تم کسی انسان کو چن لو کہ جس کی زندگی تمہارے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اچھی ہو, آپ میرے لیے مجھ سے کہو کہ مجھے اس کی جیسی زندگی دے دو تو میں اس کی جیسی زندگی کی دعا آپ کے لیے کر دوں گا. ایک دن مقرر ہو گیا, حضرت خضر نے فرمایا کہ اتنے دن کی تم کو مہلت ہے. وہ پھرتا رہا تلاش کرتا رہا, یار ایک بہترین چانس آیا ہے دعا کرا لوں, تو ایک بہت بڑے نواب صاحب کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس کے ذہن میں آئی کہ میں اس کی زندگی کی خواہش کر لوں کہ مجھے ایسی زندگی مل جائے. کیونکہ ان نواب صاحب کا حال یہ تھا کہ ان کی صحت بہت اچھی تھی, ان نواب صاحب کا حال یہ تھا کہ عالی شان محلات ان کے پاس تھے, ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی, فوج بھی ان کے پاس تھی چھوٹی موٹی, اور حشم خدم خدمتگار یہ وہ غلام نوکر ہر اعتبار سے آدمی بہت ہی بہترین تھا. اس نے کہا کہ یہ نواب صاحب کی ویسی زندگی کی درخواست میں کر لوں گا. خضر علیہ السلام سے ملاقات اس سے پہلے ہو گئی ایک دن, تو کہا کہ میں چن لیا آدمی, کہہ لیں گے ہاں میں نے آدمی چن لیا, کہہ لیں گے ایک مرتبہ اس سے پوچھ بھی لو, ایک مرتبہ اس سے کہیں ایسا ہو میں دعا کروں دعا قبول ہو جائے گی, پھر تم پریشان ہوں گے بعد میں کہ صاحب ایک چانس ملا تھا وہ بھی ایسا ہو گیا, اس سے ایک مرتبہ پوچھ بھی لو. تو وہ صاحب نواب صاحب کے پاس گئے اور اس کے بعد میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ایک ایسا چانس مجھے ملا ہے کہ جس کے لیے زندگی دعا کی درخواست میں کروں گا, مجھے وہی زندگی ملے گی, میرے ذہن میں آپ ہیں, कि मैं आपके जैसे, चूंकि सबसे ज़्यादा खुशहाल अपनी मालूमात के अतबार से मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके जैसी दुआ की दरख्वास्त कर लूँगा। उन्होंने फौरन हाथ पकड़ कहा, ओ बंदे खुदा के पागल कहीं के, चाहे जिसके जैसी दुआ की दरख्वास्त कर ले, मेरे जैसी दुआ की मेरे जैसे होने की दरख्वास्त मत करना। इस जिंदगी में मेरे से ज्यादा कोई परेशान नहीं होगा, इस जिंदगी में मेरे से ज्यादा कोई परेशान नहीं होगा। खैर, जो किस्सा उन्होंने बताया कि मैं कैसे सबसे ज्यादा परेशान हूं, वो मस्तूरात के बयान में सुनाने का नहीं है, बड़ा अजीब व गरीब है वो, तो वो मैं नहीं सुना सकता। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बता दूंगा मैं आपको, मर्दों को बता दूंगा, वो आपको बता देंगे बाद में, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सुना दे सकता हूँ कि उस चुनिंदा आदमी के पास में जाके जब उन्होंने पूछा कि मैं आपके जैसी दुआ करवा लूँ, कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा चाहे तो जिसके जैसी करवा ले, लेकिन मेरे जैसी मत करवा, मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। जिन लोगों के पास दौलत की रेल पेल है, उनकी औलादों ने उनको परेशान किया हुआ है, वो आपको उनकी बीवियों ने उनको परेशान किया हुआ है, अच्छी अच्छी औरतों को उनके शौहरों ने परेशान किया हुआ है, औरतों के लिए मर्द आजमाइश बने हुए हैं, मर्दों के लिए औरतें आजमाइश बनी हुई हैं, ये उनसे परेशान है, वो उनसे परेशान है, कभी कहीं ऐसा होता है कि औरत बहुत अच्छी होती है मर्द ख़राब होता है, कहीं ऐसा होता है कि मर्द बहुत अच्छा होता है औरत ख़राब होती है। एक बहुत ही हसीन और जमील औरत, उसका मियाँ एकदम इंतहाई बदसूरत काला कलोटा जिसकी कोई हद नहीं, तो एक साहब ने कहा कि भाई तुम दोनों तो बड़े मज़े में, कहेंगे हाँ हम तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े में। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों मज़े में रहे और खुश रहे तो जन्नत मिल जाएगी। कहेंगे क्यों? तो कहेंगे तेरी बदसूरती की वजह से उसको सब्र करना पड़ेगा, तेरी खूबसूरती की वजह से उसको शुक्र करना पड़ेगा, तो इसको शुक्र की वजह से जन्नत मिलेगी, उसको सब्र की वजह से जन्नत मिलेगी, दोनों तुम दोनों एक दूसरे की जन्नत का सामान हो। तो किसी को औरतों से परेशानी है, किसी को मर्दों से परेशानी है, किसी को औलाद से परेशानी है। अच्छा, किसी को औलाद से परेशानी नहीं है तो उसको कारोबार से परेशानी है, वो मुकदमों में फंसा हुआ है, वो सू किया हुआ हुआ है। एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब मैं किसी को आज तक तकलीफ नहीं पहुंचाया, मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया कि मेरी घरवाली मुझे बाहर निकाल दी, मैं आके मस्जिद में ठहरा हुआ हूँ। एक साहब ने कहा कि मैंने किसी को नहीं पहुंचाया तकलीफ, मुझे सू कर दिया गया है, मैं जाने वाला मिलियनों के सू के अंदर हूँ। अजीब व गरीब। एक साहब कैंसर में मुबतला थे, कहने के हजरत इतनी मैंने खिदमत, डॉक्टर थे, इतनी मैंने खिदमत की और कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन इतने बड़े हादसे में अल्लाह पाक ने मुझे क्यों मुबतला कर दिया। मैंने कहा यार जो अल्लाह के महबूब होते हैं उनको तो आजमाया जाता है, उनके साथ तो हादसात लगे हुए, गुनाहों का कफारा करने के वास्ते, कोताहियाँ खत्म दूर करने के वास्ते, दर्जात बुलंद करने के वास्ते, बहुत सी चीज़ों का एक गैबी निज़ाम है। वलकद्र खैर ही बशरी मिनल्लाह ताला में ये मज़मून है कि तकदीर पर ईमान लाओ, यानी जिस हालत में बंदे को अल्लाह पाक ने रखा है उसी में उसको इम्तिहान देना है। अपनी हालत तुम बदलना चाहोगे तो नहीं बदल सकते, कोशिश करो दुआ करो, लेकिन जिस हालत में रखा गया है उसमें राज़ी रहना ही पड़ेगा। उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर शिकायत भी नहीं कर सकते, और ये है कि दूसरे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ चीज़ें दी गई हैं उस पर शुक्र करो, कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं उस पर इससे किनात कर लो, उससे सब्र कर लो। और दीन की जो जिम्मेदारी है वो इस तकदीर के साथ में मत जोड़ो, दीन की जो जिम्मेदारी वो करते रहो हर हालत में। तो भाई हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम परेशान हैं, हम कमा नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, फला चीज़ नहीं है, आला नहीं है, ढमका नहीं है, उसकी वजह से मैं दीन पर नहीं चलूँगा, उसकी वजह से मैं दीन का काम नहीं करूँगा, उसकी वजह से मैं अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलूँगा, उसकी वजह से जो है ना दीन की मेहनत हम नहीं करेंगे, उसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह से रोज़ा, ये नहीं होने का है। वलकद्र खैरी व शर्री मिनल्लाह तआला में ये मज़मून है। तकदीर पर ईमान लाने का मतलब ये होता है कि हालात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, हर हाल में अल्लाह पाक से राज़ी रहना है, जो नियमतें हैं उन पर शुक्र करना है, जो तकलीफ़ें हैं उन पर सब्र करना है, और उसके साथ साथ फिर ये मसला है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारियाँ हैं उस हालत में अदा करना है। गरीब अपनी गुरबत में अल्लाह के दीन पर अमल करेगा और दीन की मेहनत करेगा, अमीर अपनी अमारत में अल्लाह के दीन पर अमल करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की मेहनत करेगा, मर्द अपनी मर्दानगी के साथ, औरत अपनी निस्वानियत के साथ अल्लाह के दीन की पाबंद होगी और अल्लाह के दीन की मेहनत भी करेगी। जैसे मर्दों पर अल्लाह के दीन की मेहनत की ज़िम्मेदारी है, औरतों पर भी अल्लाह के दीन की मेहनत की ज़िम्मेदारी है। वल मोमिनूना वल मोमिनातु बादुहुम औलिया उबाद, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے، یا امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں وہ نہیں عن المنکر کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ یطیعون اللہ و رسولہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک رحم فرمائے گا. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، جیسے وہاں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر مستقل ہے، یہاں پر منافق مردوں کے ساتھ منافق عورتوں کا ذکر مستقل ہے، یہ خاص مصلحت سے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی مردوں کا ذکر کر کے ان کو حکم بیان کر دیتے ہیں اور عورتیں ان کے تابع ہو کر اس ذمہ داری میں شریک ہو جاتی ہیں. سب جگہ قرآن پاک میں حدیثوں میں ایسے ہی ہے، لیکن بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ سے بیان فرمایا ہے، اس سے عورتوں کے کام کی مستورات کے کام کی اہمیت اور ذمہ داری کو سمجھو، اور مستورات اپنی فرض اور اپنے فرض کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے دین کی محنت میں حصہ لینے کی نزاکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ سے بیان کیا، اور دین کی محنت نہیں کرنے والوں کو بھی الگ سے بیان کیا. چنانچہ یہاں فرما رہے ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے بعض ہیں، یأمرون بالمنکر وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کی ترغیب دیتے ہیں، برائی کو چلاتے ہیں، وینہون عن المعروف اور معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں. کتنی خواتین ہیں، کتنی مستورات ہیں جو برائی کی بات چلاتے رہتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے رہتے ہیں. ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو تنگ رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے اللہ کے لیے. نسوا اللہ اللہ پاک کو انہوں نے بھلا دیا، فنسیہم اللہ نے بھی ان کو بھلایا. اولئک هم الفاسقون یہ فاسق لوگ ہیں، جیسے ان کو کہا تھا کہ وہ کامیاب ہیں ان کو پڑھ یہ فاسق یہی تک ہے نا. اولئک هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، یہ منافقین کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا ان کے ساتھ، منافق مردوں سے بھی، منافق عورتوں سے بھی اور کفار سے بھی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے. تو منافقین کی خصوصیت ہے برائی کو چلانا اور بھلائی سے روکنا، اور مومنین کی خصوصیت ہے بھلائی کو چلانا اور برائی سے روکنا. صحیح بولا، الٹا تو نہیں بول دیا. مومنین کی خصوصیت ہے کہ امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور منافقین کی خصوصیت ہے کہ امر بالمعروف نہیں کرنا، امر بالمنکر کرنا، نہیں عن المعروف کرنا، الٹا کرنا. اور یہ منافق مردوں کی بھی خصوصیت ہے، یہ منافق عورتوں کی بھی خصوصیت ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو آدمی شریعت کا پابند ہے اس پر عورتیں کیسے تبصرہ کرتی، جو عورتیں اپنے بچوں کو حافظ بنا رہی ہیں، عالم بنا رہی ہیں، ان کے اوپر کیسا بولتے ہیں. جو لوگ شادیوں کے اندر شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں کیسے لوگ ان کو بولتے ہیں، عورتیں کیسی بات ان کے بارے میں کرتی ہیں. جو رسم و رواج کرنے والے ہیں، غلط طریقے سے ناچ گانا کرنے والی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں عورتیں کیسے تعریف کرتی ہیں. لباس میں بے لباسی کرنے والے، بے پردگی کرنے والوں کے لیے کیا تاثر ہوتا ہے، پردے دار اور خواتین کے اوپر کیسے کیسے جملے کسے جاتے ہیں، کیسے ان پہ، تو یہ سب الٹی چیزیں ہی ہیں نا، یہ منافقین کی خصوصیات ہی تو ہوئی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جو ایمان اور ایمان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا ان تقدیر کا بہانہ نہیں کرنا ہے اس کے واسطے، بلکہ یہ تک خواہش نہیں کرنا ہے کہ ہم مرد ہوتے تو یہ کرتے، اور مردوں کو یہ خواہش نہیں کرنا ہے کہ ہم عورت ہوتی تو یہ کرتی. منع کیا گیا تم اپنی تقدیر، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، اس لیے فرمایا والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، خیر اور شر، اچھا اور برا، حلو اور مر، کڑوا اور میٹھا، موافق اور ناموافق، تکلیف دے اور آرام دے، جو کچھ حال چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا آدمی کو پیش آتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. اور قرآن پاک میں بہت جگہوں پر اس مضمون کو اور کھولا بھی گیا ہے، اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان فرمائی گئی ہیں. بہت عجیب و غریب قسم کے حالات سے انسان کو اس دنیا میں اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہے، چاہے انڈیا میں رہے، چاہے پاکستان میں رہے، چاہے بنگلہ دیش میں رہے، چاہے آسٹریلیا میں رہے، چاہے وہ عسرت میں ہو، چاہے یسرت میں ہو، وہ پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، صبر میں رہتا ہو کہ شہر میں رہتا ہو، लीगल हो क्या इलीगल हो, औलाद वाला हो क्या औलाद वाला ना हो, शादीशुदा हो क्या गैर शादी, सब के लिए अल्लाह पाक ने दो किस्म के हालात तय किए। वल बाथी मादल बादल मौत, और मरने के बाद में उठाए जाने पर यकीन रखना। तो ये ईमानियात अपने बनाने हैं, मरने के बाद उठाए जाने का यकीन अल्लाह पाक के ऐसा दिल में हो कि हर काम से पहले मैं जब मरने के बाद उठाया जाऊंगा तो इस काम का क्या रिजल्ट है, ये जहन में रहना है। आखिरत पर यकीन रखना है कि आखिरत की पूरी ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नम की तफसीलात, मैदान हशर की तफसीलात, फुजरात की तफसीलात, वो सब हमारे आँखों के सामने। किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूल पर ईमान, रसूल की शख्सियत, रसूल की अजमत, रसूल से बड़ा कोई नहीं होता मखलूक में, रसूल से ज़्यादा कोई नहीं जानता मखलूक में, रसूल से ज़्यादा सही कोई नहीं जानता मखलूक में, जो जानता सबसे ज़्यादा सही रसूल जानते हैं। अपने इल्म की नफ़ी करके उनके इल्म का इस्बात करना, अपने कल्चर की नफ़ी करके उनके कल्चर का इस्बात करना, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक उसकी नफ़ी करके उनकी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक का इस्बात करना। रसूल पर ईमान, हमारा रसूल पर ईमान है का मतलब क्या है, मैंने रसूल को अपने लिए अल्लाह का रसूल होने की हैसियत से पसंद कर लिया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल व नबिया, राज़ी हो गया मैं यानी पसंद कर लिया मैंने अल्लाह को अपना रब बनाकर, इस्लाम को अपना दीन बनाकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाकर। रसूल पर ईमान लाने का मतलब मेरी बहनों अच्छी तरह समझ जहन नशीन रखना है, रसूल पर ईमान लाने का मतलब यह नहीं होता कि एज ए रसूल हम आपको अल्लाह के रसूल मानते हैं, रसूलों में एक रसूल मानते हैं। रसूल पर ईमान लाने का मतलब यह होता है कि मेरे लिए मैंने आपको अपना रसूल मान लिया अल्लाह की तरफ से। इसको और ज़्यादा मैं वाज़े अंदाज में आपसे इस तरह अर्ज कर सकता हूँ कि हर खातून के जो शौहर है, हस्बैंड है, एक उसको अपने हस्बैंड होने की हैसियत से उसको एक्सेप्ट करना कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, और एक मैं इस बात को जानती हूँ कि फलां फलां का हस्बैंड है। हर औरत का एक हस्बैंड है, जो शादीशुदा औरत है उसका एक हस्बैंड है, हर आदमी का जिसके जो शादीशुदा उसकी एक बीवी है। तो एक है अपनी बीवी होने की हैसियत से किसी का कबूल करना कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी बीवी है और मैं जानती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, मैं न सिर्फ जानती हूँ बल्कि मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड है बल्कि मानने में जो जिम्मेदारियाँ आती हैं वो अलग है, किसी का हस्बैंड हो है बल्कि जो जानते हैं उस जानने के अतबार से जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। हमारे लिए दूसरे पैगंबर जानने की जगह पर हैं, लेकिन हमारे हबीब आका इनामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए मानने की जगह पर हैं, उनको भी मानना ही पड़ता है, लेकिन जानने के एतबार से मानना पड़ता है कि अल्लाह के पैगंबर थे वो, लेकिन अपने हम जिसकी उम्मती हैं उसको मानना पड़ता है अपने लिए। मैंने कबूल किया, मैंने माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, मैं उनका उम्मती हूँ और मैं उनकी उम्मती हूँ, रसूल पर ईमान का ये मतलब। जब मैंने मान लिया तो उनकी तरबियत को मैं कबूल करूँगी, जब मैंने मान लिया तो उनकी इताअत मैं करूँगी, जब मैंने मान लिया तो उनकी तालीम को मैं कबूल करूँगी, मैं मुतालिमा और आप मुअल्लिम, मैं मुतरबिया और आप मुरब्बी, मैं ताबे और आप मतबू, मैं उम्मती और आप रसूल। मैंने मान लिया रसूल को मानने का, रसूल पर यकीन जो अपने दिल के अंदर बिठाना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाने के लिए अपने को आमादा करना होता है, हुजूर के तरीक़े को कबूल करना होता है, हुजूर की तालीम को कबूल करना होता है, हुजूर की तरबियत को कबूल करना होता है, हुजूर की हिदायत को कबूल करना होता है। अपने लिए भी जो जो जिम्मेदारी मुझे दी गई अपने शोहर के साथ मुझे उसको निभाना है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई अपनी औलाद के साथ मुझे उसको निभाना है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई पर्दे वगैरह के बारे में मुझे उसको निभाना है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई खाने पीने के अतबार से उसको मुझे निभाना है। यही हाल शौहर को और यही हाल मर्द को कि मैं रसूल को मानता हूँ, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िम्मेदारी मुझे दी है अपनी बीवी के साथ में रहने की, बच्चों के साथ में रहने की, वो मैं मानता हूँ। जैसे अखलाक से रहने को आपने फरमाया, जैसे नरमी से और शफ़क़त से रहने को आपने फरमाया, जैसे सब्र से और हिलम से रहने को आपने फरमाया, जैसे उनकी मुरव्वत और रियायत करने को आपने फरमाया, जिसको हुस्न मुआशरत कहते हैं। मैं मानता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी घर वालियों के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा दिया उस तरीक़े को मैं मानता हूँ अपने नबी के। ऐसा आदमी अपने घर में बहुत ही पसंदीदा इंसान होता है, मोहब्बत किया जाता है, चाहा जाता है, क्योंकि वो जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा होता है, लिहाज कर रहा होता है, उसकी ज़ुबान सही होती है, गाली गलौज उसकी ज़ुबान में नहीं होती, तान तशनी उसकी ज़ुबान में नहीं होती, बेइज्जती उसकी ज़ुबान में नहीं होती, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेइज्जती अपने घर वालों की सिखाई नहीं है, ना अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ उम्मातुल मोमिनीन के साथ कभी डिसऑनरी वाली बात करते थे, उनको कभी ऐसा नहीं करते थे कि चूँकि वो औरत है तो उसको या उसके घर वालों को यानी अपने ससुराल को गिनना, ताने देना, गाली गलौज करना, छोटा बताना, ये नहीं था। तो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के उम्मती होने के हैसियत से सरकार को अपना रसूल मानेगा वो अपने घर वालों के साथ में जिस अखलाक का हामिल होगा आप समझ लीजिए बिल्कुल हुजूर का नमूना होगा। और जो औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानेगी उसका अपने घर वालों के साथ में जो सलूक होगा वो बिल्कुल फनाइयत वाला होगा, आपकी जो मर्ज़ी वो हमारी बात, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, समोतात बात मानना। फसालहात वक़ानितात नेक औरतें वो होती हैं जो बात मानने वाली होती हैं, कुरान पाक में क़ानितात मुतियात के माने में है, इताअत करने वालियों के माने में है। तो अल्लाह पाक ने हमको ईमान बनाने के लिए पाबंद फरमाया कि तुम अपना ईमान बनाओ, ईमान में ये सारी चीज़ें हैं, ईमानियात कहते हैं इनको, ये इसका यकीन दिल के अंदर आना है, हम जानते हैं इनको लेकिन जो इनका जो इसका यकीन होना था उस पर मेहनत चाहिए थोड़ी सी। हमारे अकीदे यही हैं, कोई दूसरे अकीदे नहीं हैं, हम इन सात बातों पर ईमान रखते हैं लेकिन इन अकीदों पर मेहनत करके इनमें एक कैफियत डेवलप करना है, इनमें ताजगी लाना है, इसके अंदर रसूख और पुख्तगी लाना है, इसका इस्तेहज़ार लाना है कि ये हमें हर वक्त याद रहें और इसके तकाजे के मुताबिक चलना हमारे लिए आसान हो जाए, जो इसका डिमांड है उसके मुताबिक चलने के लिए मेहनत चाहिए होती और इसके मुताबिक जो ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी भी मेहनत चाहती है, क्योंकि चाहना अलग होता है और मेहनत करना करके उसके मुताबिक होना अलग होता है। हर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पसंद करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करता है, हुजूर की सुन्नतों को पसंद करता है, हुजूर की तालीमात को पसंद करता है, हुजूर को सच्चा मानता है लेकिन अमल उससे नहीं होता, वो नफ्स का शिकार है, वो शैतान का शिकार है, वो माहौल का शिकार है, वो बुरे असरात का शिकार है, वो बुरी आदतों का शिकार है, वो गफलत का शिकार है, वो भूल का शिकार है। तो ये मतलब नहीं है कि ईमान उसका ख़राब है, गड़बड़ है इस वजह से, नहीं, ईमान पर मेहनत करके उसने उसके मुताबिक अपनी तरबियत नहीं की गई। बहनों का भी यही मामला है, भाइयों का भी यही मामला है, इसलिए ईमानी ज़िंदगी पर मेहनत चाहिए होती है। ईमानी ज़िंदगियों पर जब मेहनत होती है तो फिर ईमान वाले अमाल और ईमान वाले अखलाक, ईमान वाले हालात, ईमान वाली पाकीज़ा ज़िंदगी, ईमान वाली अमानतदारी, ईमान वाली नरमी और शफ़क़त, ईमान वाली हमदर्दियाँ, ईमान वाला इसार और क़ुरबानी का जज्बा, ये अल्लाह पाक ज़िंदा फरमाते हैं तो फिर एक दूसरे की हमदर्दी वजूद में आती है, फिर शफ़क़तें वजूद में आती हैं, फिर अखलाक वजूद में आते हैं और फिर जो है फिर हसन मुआशरत वजूद में आती है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर सब के यानी आदमी अपने आप को क़ुरबान करके अपने को तकलीफ़ में डाल के दूसरे को आराम पहुँचाता है, दूसरे की खिदमत करता है, दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता है, हसन मुआशरत वाली ज़िंदगी जो है ना वो ज़िंदा हो जाती है, ईमानी ज़िंदगी, इसकी मेहनत चाहिए। तो ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान मर्दों पर, मुसलमान औरतों पर रखी है कि हम अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले पहले मेहनत करके इसमें लग जाएं, ज़रूरतें भी अपनी पूरी करें और ज़िंदगी का मकसद भी पूरा करें। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी है, बंदगी में बात मानना भी है, बात फैलाना भी है, इबादत करना भी है, दावत देना भी है, खुद दीन पर चलना भी है और दीन की मेहनत करना भी है। जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी वो करना है, नमाज़ पढ़ने की ज़िम्मेदारी दी वो भी करना है, तो दीन की मेहनत की ज़िम्मेदारी दी वो भी करना है, रोज़ा रखने की ज़िम्मेदारी दी वो भी करना है, दीन की मेहनत की ज़िम्मेदारी दी वो भी करना है, जो अल्लाह ने कहा वो करना है, दावत देने की भी ज़िम्मेदारी और दीन के लिए जद्दोजहद करने की भी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रखी है। इसके लिए दीन की मेहनत करना है, इस दीन की मेहनत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल से एक माहौल दिया है, उसके लिए हालात दिए हैं, इज्तमाईयत अता फरमाई है, तबलीग वाला ये मुबारक अमल, दावत वाला ये मुबारक अमल हमको दिया है, हमारे घर के मर्दों को उसमें लगाना है, हमारे बच्चों को उसमें लगाना है, بچوں کو بچانا ہے، بچوں کے اسلام کو بچانا ہے، بچوں کے ایمان اور دین کو بچانا ہے، صرف بچوں کو پالنے کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو جہنم سے بچانے کی پوری پوری فکر اور محنت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، جہاں اپنی بھی بچوں کو اور بیویوں کی ذمہ داری، شوہروں اور بچوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ محنت کرنا پڑے گا، ان کو ماحول دینا پڑے گا، تعلیم کے اعتبار سے بھی، عادتوں کے اعتبار سے بھی، تو ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے۔ تو جو اپنے بالغ بچے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، جو اپنے ہسبینڈ ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، ان کو ترغیب دو، ان کو آمادہ کرو، ان کا ذہن بناؤ، ان پر محنت کرو، ان کا نام بھی دو اور ان پر محنت بھی کرو۔ کیونکہ آپ کے دل میں، عورتوں کے دل میں، ہماری بہنوں کے دل میں اگر آ جائے کہ ہمارے گھر والے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پہ جائیں، اللہ کے دین کے لیے، تو پھر ان کا جانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، بھائیوں کو اپنے، ان کا ذہن بنا کے بھیجو، اپنے والدین میں سے والد کو، اپنے چچا کو، والد کو، جو گھر میں ہیں، بہت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ فارغ ہیں، آرام سے وہ جا سکتے ہیں، صرف ذرا کچھ صحت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم ان کا ذہن بنا کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور خود بھی اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں، اور اللہ کے دین کی محنت کی ترتیب بنائیں۔ اگر پوری دنیا کے مرد دیندار ہو جائے، مسلمان مرد، اور عورتوں میں دین نہ آئے، تو بھی اکثریت، چونکہ وہ عورتوں کی زیادہ ہے، اس لیے پھر بھی اکثریت بے دینیوں کی ہو جائے گی۔ اور یہ عورتوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو عورتوں کی پسند ہوتی ہے وہی بازار کی زینت ہوتی ہے۔ جتنا مال بازار میں مل رہا ہے وہ عورتوں کی پسند کے مطابق ملتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عورتوں کی پسند گھر میں ہوتی ہے، بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کی پسند سے۔ تو اصل یہ ہے کہ جو عورتوں کی پسند ہوگی دنیا میں وہی چیز چل رہی ہوگی۔ اگر دین پسند ہوگا تو دین چل رہا ہوگا، بازار میں دین ہی ہوگا۔ بازار میں کپڑے خریدنے جاؤ، اب وہ آستینوں والے کپڑے نہیں مل رہے، بچیوں کے کپڑے لینے کے لیے ہم حیدرآباد میں پھر رہے ہیں، دکان والوں سے بول رہے ہیں کپڑے کا کپڑے ہونا ہے یا فل آستینوں کے، کہیں گے فل آستین کون پہن رہا ہے حضرت آج کل، فل آستین کے کپڑے نہیں ملتے۔ تو عورتیں اگر گھر میں آستین والے کپڑے پہنتی ہیں، فل آستین والے، تو بازار میں ملیں گے وہ۔ جو عورتوں کی پسند ہوتی ہے وہی بازار کی زینت ہوتی ہے، جو عورتوں کی پسند ہوتی ہے وہی دنیا میں باہر چل رہا ہوتا ہے۔ عورتیں بھی اسی چیز کو ترجیح دے رہی ہوتی ہیں، مرد بھی اسی چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کے زمانے میں صحابیات کی پسند میں دین آ گیا تھا، تابعیات جو تھے، تابعات جو تھے، ان کی پسندیدگی کے اندر دین تھا، تو ان کے گھروں میں بھی دین، بازاروں میں بھی دین، باہر بھی دین، اندر بھی دین۔ تو عورتوں کی پسند، ان کی اپنی مرضی اور ان کی جو پسند ہوتی ہے وہ جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا جذبہ کیسا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے تو ایمانی جذبات ہوتے ہیں، جذبات کے ساتھ پسندیدگیاں ہوا کرتی ہیں۔ بے ایمانی کے جذبے ہوتے ہیں، بے ایمانی اندر بھر جاتی ہے، خیانت بھر جاتی ہے، دنیا داری بھر جاتی ہے، دنیا کی محبت بھر جاتی ہے، تو پھر دنیا ہی کے جذبات آتے ہیں اور اسی چیز کی پسند سامنے آتی ہے، اسی سے ساری دنیا بھر جاتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، حب دنیا رأس کل خطیہ۔ اس دنیا کی محبت نے جذبات دنیاوی بنا دیے، دنیاوی جذبات نے پسند دنیاوی بنا دی، دنیاوی پسند نے ساری دنیا کو دنیا کے ساتھ و سامان سے بھر دیا، جو کچھ بھی ہو رہا دنیا کے لیے۔ اس وجہ سے ہماری بہنوں میں دین کی محنت ہونا بہت ضروری ہے۔ مستورات میں دین کی محنت کرنے والے بڑا اجر پائیں گے، بہنوں میں، خواتین میں دین کی محنت کرنے والے بڑا اجر پائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دین کی محنت کا خود بھی ارادہ فرمائیں، عزم فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو آمادہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک موقع ہوا کرتا ہے کسی چیز کا، اس میں بہت اچھی طریقے سے کام ہو جاتا ہے، تو ایک ہمارے پاس اجتماع آ رہا ہے، اس اجتماع میں اپنے گھر کے مردوں کو بھیجو، اور اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے مردوں کو بھیجو، اجتماع میں بھی بھیجو اور اجتماع سے بھی جانے کا ذہن بناؤ، جانے کی تشکیل کرو۔ ہمارے تشکیل کرنے سے مرد نہیں جائے گا اتنا جتنا آپ کی تشکیل کرنے سے جائے گا، اور اگر ہماری تشکیل کرنے سے کوئی راضی ہو گیا مردوں کی تشکیل سے اور عورت نے اندر پھڈا ڈال دیا تو بھی نہیں جا سکے گا۔ جانا ہے تو یہ بچے کو لے جاؤ، لو گود میں دے دیا اس کو، تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، بھائی وہ بیچارہ کہاں سے جائے گا۔ تو عورتوں کے ذہن میں آنا ضروری ہے کہ یہ دین کی محنت کتنی اہم ہے، اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ، بے دینی کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ دین کی محنت کا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ تو آپ ذہن بنا کے ان کو بھیجیں بھی، اور آپ کے لیے جو دین کی محنت کرنے کے طور طریقے بتائے جاتے ہیں، ہمیشہ مذاکرے میں آتے رہتے ہیں کہ عورتوں کی محنت کا انداز کیا ہوتا ہے، تو آپ بھی اللہ کے راستے میں بھی جائیں گی اور اپنے مقام پہ بھی کریں گی۔ تعلیم کے حلقے، گھروں کے اندر تعلیم، घर के अंदर सादे माशरत, इस्लामी ज़िंदगी, सुन्नत वाली ज़िंदगी, बच्चों की तरबियत वगैरह वगैरह जो इनके लिए हुआ करते हैं मेहनत के अंदाज़, वो उनको इख्तियार, औरतों को इख्तियार करते हुए उनको दीन की मेहनत में भेजना है। तो ये जो इज्तिमा आ रहा है ये इज्तिमा मर्दों का नहीं है, आपका है। मतलब ये समझे, औरतें नहीं शिरकत करती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका इज्तिमा नहीं होता। ये इज्तिमा आपका है, दुआ आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, रोज़े आपको रखने हैं, यासीन शरीफ की तिलावत आपको करनी है, जहन में लोगों में बात आपको चलानी है, महल्ले में बात आपको चलानी है, मर्दों का जहन बनाने का काम आपको करना है। तो ये आपका अपना इज्तिमा है, इस इज्तिमा से थोड़ा सा, इस इज्तिमा में आपका भी कुछ हिस्सा पड़ जाए, कुछ खैर में आप भी शरीक हो जाएं, जिस अंदाज़ में आप शरीक हो सकती हैं। उसके लिए आपसे गुजारिश होती है कि आप तश्कील में अपने मर्दों का भी नाम दें, और ये भी करें, जहाँ बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं वहाँ की मस्तूरात ने बड़े बड़े काम किए हैं। 1-1 लाख मस्तूरात का रोज़े रखना तक मजबूर है, अभी हाल के वाक़यात के अंदर 1-1 लाख औरतों ने रोज़ा रखा ताकि इज्तिमा कामयाब हो जाए। श्रीलंका के वाक़ सुनने में आते हैं, इंग्लैंड के वाक़ सुनने में आते हैं, पूरे पूरे इज्तिमा के अंदर हज़ारों की तादाद में 50-50 हज़ार 1-1 लाख जहाँ लोग आए, वहाँ पर औरतों ने कहा कि इनको बाज़ार की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं, हम घर से रोटी बना के भेजेंगे। पूरे इज्तिमा के ख़त्म होने तक इज्तिमा में शुरुआ के लोगों की रोटियाँ जो है ना वो औरतों ने भेजी अपने अपने घरों से। कितनी बनाई होंगी आप अंदाज़ा करो, कितनी मेहनत करी होगी, वक्त कितना लगाया, मेहनत कितनी लगाई, पैसा भी लगाया, ज़ाहिर है कि अपने घर का आटा दिया, अपने घर की रोटी दी, पैसा भी लगाया, और फिर अपनी मेहनत कितनी, सुबह से शाम तक कितनी रोटियाँ इनको बनानी पड़ी होंगी, तो भेजा उन्होंने कुर्बानी, दुआएँ भी की, इज्तिमा कामयाब हुए, हज़ारों लोग अल्लाह के रास्ते में निकले, उनके ज़रिए से जो खैर वजूद में आया, अब अंदाज़ा करो कितना सवाब मिला होगा उनको। जगह जगह मस्जिदें अल्लाह पाक इसी वजह से बनवा रहा, जगह जगह इदारे खुलवा रहा, बच्चे हाफिज हो रहे हैं, बच्चे आलिम और मुफ्ती बन रहे हैं, लोग नमाज की तरफ मुतवज्जे हैं, लोग रोज़े की तरफ मुतवज्जे हैं, लोग सुन्नतों पर चलने पर आमादा होने लगे हैं, औरतों में पाबंदियाँ आने लगी हैं, रोज़े आने लगे हैं, दीन की मेहनत के ये सब असरात होते हैं। अल्लाह पाक उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम को बाग बहार की शक्ल में सामने ला रहा है। इस्लाम के ख़िलाफ़ भी कोशिशें वैसे ही हो रही हैं, लेकिन इस्लाम के मुआफ़िक भी मेहनतें वैसे ही हो रही हैं। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि इस कश्मकश के अंदर दुनिया वाले दुनिया की मेहनत करते रहेंगे, दीन वाले दीन की मेहनत करते रहें, दुश्मनान इस्लाम दुश्मनी की मेहनत करते रहेंगे, और मुआफ़िकीन इस्लाम मुआफ़िकत की मेहनत करते रहेंगे। अल्लाह पाक अपने एतबार से अंजाम ज़ाहिर फरमाने वाला है, हर एक को उसको उसका भुगतान भुगतना है। इसके लिए हमको ये मुज़ाकरा इसलिए किया जाता है कि हम दीन की मेहनत करने के लिए अपने आप को आमादा करें। अल्लाह ताला शानुहु मुझे भी हिम्मत अता फरमाए, आपको भी हिम्मत अता फरमाए, इरादे करो और अपने अपने नाम लिखाओ। अल्लाह जज़ाए खैर।